अब अगली हदीस वो हदीस है जिसको पढ़ने सुनने के बाद रग़बत भी आती है और ज़हनों में सवालात भी उठते हैं। कैसे, आइए देखिएगा। जुमे के लिए पहले आने वालों का सवाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते जुमे के दिन मस्जिद के दरवाज़े पर सवाब लिखने के लिए ठहरते हैं और सबसे पहले आने वाले का नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आने वाले का इसी तरह नंबर वार लिखते जाते हैं। जो शख्स नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त मस्जिद में जाता है, इसे इतना सवाब मिलता है जितना हरम की तरफ कुर्बानी के लिए ऊंट भेजने वाले को सवाब मिलता है। फिर जो बाद में आता है, इसे इतना सवाब मिलता है जितना काबे की तरफ कुर्बानी के लिए गाय भेजने वाले को सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को दुम्बा भेजने वाले के बराबर, इसके बाद आने वाले को मुर्गी और इसके बाद आने वाले को अंडा सदका करने वाले की मानद अजर मिलता है। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है, तो फरिश्ते दफ्तर यानी लिखे हुए औराक लपेट देते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी प्यारी रिवायत लगती है, और ये बुखारी की रिवायत 929 और मुस्लिम में 850 है। क्या पता चला? आप देखिए कि इस हदीस में बिल तरतीब पांच चीज़ों का जिक्र है, ऊंट, गाय, दुम्बा, मुर्गी और अंडा। इसकी सूरत ये होगी कि जुमे के दिन तलुए आफ्ताब से लेकर खुतबा जुमा के आगाज तक के वक्त को पांच बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जो जो शख्स पहले हिस्से में मस्जिद पहुंचा, इसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। मौता इमाम मालिक में इसको असातुल उला के अल्फाज से बयान किया गया, यानी पहली घड़ी। ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जो मुसलमान इस घड़ी में नमाज की हालत में खड़ा अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे, तो अल्लाह ताला इसे वो भलाई ज़रूर अता करते हैं। ये रिवायत है सही बुखारी 935 और मुस्लिम 852। ये भी हो गई बात। फिर आप देखिए कि कोशिश क्या करनी चाहिए शुरू में, और दुआ भी कीजिए तो ऐसे वक्त में कि जब आप नमाज के बाद उस वक्त में, यानी ख़ास घड़ी होती है। अब वो कब कहाँ आ जाए, तो बेहतर है कि जितना भी वक्त दुआओं में गुजर सके, इबादत में गुजर सके, वहाँ कीजिए। इसी तरह रिवायत में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुमे के दिन कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के खात्मे तक के दरमियान है। यहाँ आप देखिए हदीस मज़ीद क्लियर हो गई ना, एक हदीस की वजाहत दूसरी हदीस से भी हो जाती है, जैसे एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से होती है। और ये रिवायत सही मुस्लिम में 853 नंबर की रिवायत है। एक कॉल के मुताबिक कबूलियत की घड़ी नमाज असर से लेकर गरूब आफ्ताब तक के दरमियान होती है। यानी आप देखिए ये इतना इख्तलाफ क्यों है, वुसत है। आपको जो वक्त मिले आप उसकी नियत करके वो काम कर लीजिए, अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला आपके लिए उसमें बरकत दे दे। ठीक है। तो कितनी खूबसूरत रिवायतें हमने पढ़ी। फिर सर आप देखिए कि खुतबा जुमा के भी कुछ मसाइल हैं, वो भी ले लेते हैं। अब ख़ास तौर पे खुतबा जुमा के मसाइल हैं, ज़ाहिर है जो इमाम खुतबा दे रहे होते हैं उनके लिए भी कुछ अहकाम हैं, वो भी हमने सीखने हैं। आप इस नियत से सीखें ताकि अपने बेटों को बच्चों को जुमा पढ़ाने के लिए तैयार करें, तो आपको पता हो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहली बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खुतबे इरशाद फरमाते, इनके दरमियान बैठते, खुतबे में कुरान मजीद पढ़ते और लोगों को नसीहत फरमाते, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था थोड़ा सा एक्शंस के साथ। ये मुस्लिम की रिवायत है 862। ठीक है। फिर दूसरी रिवायत क्या है कि आपकी नमाज भी औसत अंदाज की और खुतबा भी औसत अंदाज का होता था, यानी एवरेज, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। ठीक है। ये रिवायत मुस्लिम की है 866 नंबर की। फिर उसके बाद देखिए कि अगली चीज़ क्या है। आपने फरमाया कि आदमी की लंबी नमाज और मुख्तसर खुतबा दानाई की अलामत है, लिहाजा नमाज लंबी करो और खुतबा मुख्तसर करो। ये रिवायत मुस्लिम में है 869। फिर अल्लाह के नबी खुतबा जुमा में सूरत कौफ की तिलावत फरमाते थे, यानी 26वें पारे की सूरत कौफ, एक थी कहफ। और ये कहफ, कुछ लोग इससे ना गलती खाते हैं क्योंकि वो भी जुमे को होती है सूरत कहफ और ये सूरत कौफ है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है ना। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है 872। 873 3 نمبر کی ہے. تو یہ بڑی ہی پیاری سورت ہے, اس میں تو قیامت کا اتنا خوبصورت منظر ہے کہ بس آپ اس کی تلاوت سنیں, ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں, اتنا زبردست اس میں بیان ہے قیامت کا. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی ایک لفظ جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے, لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے. ایسی آیتیں ہیں اس میں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بیان ہے کیا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے خطبے میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے سے از راہ نصیحت کہے چپ رہو, تو بلا شبہ تو نے بھی لغو کام کیا. یہ تھی وہ روایت جو میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ لغو کیا ہے. یہ بخاری کی روایت 934 اور مسلم 851 ہے. یعنی کسی بولنے والے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ رہو. چپ رہو کہنا اگر لغو ہے تو سوچئے بولنا کتنی بڑی بات ہوگی. اور لغو وہی ہے بے مقصد, بے ارادہ, یعنی بالکل کہ ہیڈ لیسنس, بے سوچے سمجھے بات کرنا. تو اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبے میں سامعین کو آپس میں کسی قسم کی بات کرنی جائز نہیں, بالکل خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے. البتہ خطیب اور سامع ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں. یہ روایت بخاری کی 932 اور مسلم میں 897 ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. یعنی خطیب کون ہے؟ خطبہ دینے والا, امام صاحب. اور سامعین کون ہوتے ہیں جو آ کے بیٹھے ہیں؟ تو کوئی ضرورت ہے, مثلا آگے ہو جائیے, سائڈ پہ ہو جائیں, باہر کسی کی گاڑی ہے, کچھ ایسا ہے نا. یعنی نماز میں تو ہم بالکل بات نہیں کر سکتے نا, وہ تو ٹوٹ جائے گی, لیکن خطبے کے دوران ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے. نافع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, کیا صرف جمعے میں منع ہے؟ فرمانے لگے, جمعے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. یعنی کوئی بھی نہیں بندہ پسند کرتا کہ اس کی جگہ سے اس کو اٹھا کر کوئی اور بیٹھ جائے. تو یہ مینر نہیں, اچھا ال مینرڈ ہے, تو اسے منع کیا گیا. اور یہ روایت بخاری کی ہے 911. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آکورڈ لگتا ہے. ویسے بھی آپ کسی کے گھر یا شادی میں گئے ہوں, کسی بھی اچھی محفل ہو, تو جب کوئی ایک بندہ اٹھ کر جائے کھانا ڈالنے, تو آپ اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. حکم ہے کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ واپس آ کر ادھر ہی بیٹھے. یہاں تو شکر کرتے ہیں کرسی خالی ہوئی تو اجازت لے کے بیٹھنا چاہیے. پھر اس طرح دیکھیے, عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو جمعے کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا, تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. یعنی دونوں ہاتھ نہیں, صرف ایک ہاتھ سے. مراد یہ ہے کہ باڈی لینگویج کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلم کی روایت ہے 874. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ایکشنز تک نوٹ کرتے تھے. یعنی یہ جو بشر بن مروان تھے, یہ ذرا زیادہ ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زیادہ جوش میں بات کر رہے ہوں گے, تو صحابہ نے پھر اس چیز کو دیکھ کر برا سمجھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا, اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی. یعنی آپ خطبہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اپنی عصا رکھتے تھے, جیسے آج بھی کوئی اولڈ بزرگ ہیں تو ہاتھ میں سٹک لے کر خطبہ دے سکتے ہیں. اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی 1096 ہے, اور ابن خزیمہ کی 1778 ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دو خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے, جیسا کہ ہم نے اوپر بھی دیکھ لیا. یہ بخاری کی روایت ہے 928, 928. اب یہ تو باتیں ہوگی خطبے کی, جس کا تعلق عموماً خطیب سے ہے. تو آپ, میں اس میں تو نہیں ہے, لیکن اب اگلی بات بڑی اہم ہے, ذرا سے توجہ سے دیکھیے گا. ظہر احتیاطی, بعض لوگ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں, یعنی احتیاطاً جمعے کے بعد ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں, تو یہ کام بدعت ہے ہمارے. چلے کوئی نہیں, احتیاطاً یہ بھی کر لوں, اچھا تھوڑا سا زیادہ ہی کر لوں, یہ بھی کر لوں. تو آپ دیکھیے کہ جس نے جو عبادت کی, جو کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ یقین سے کرے. ہمارے دین میں یقین والی عبادت ہی قبول ہوتی ہے, اس لیے اس کے علاوہ دوسری چیزوں جس میں ذرا سا ڈاؤٹ اور شک آ جائے اس کو نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ये नहीं कह जी जुमा तो छोटा है, जोहर तो लंबी है। अच्छा कल लोग कहेंगे नहीं जी हम जोहर ही पढ़ लेंगे क्योंकि रखते तो ज्यादा है, उसमें अजर ज्यादा होगा। तो देखिए 4 रखतों या 14 या 20, 5, 2 का सवाब नहीं है, इत्तबाए सुन्नत का सवाब है। उसको जहन में रख के काम करेंगे तो बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, बास लोग नमाज जुमा के अलावा जोहरे इख्तियाती भी पढ़ते हैं और इसका फतवा भी देते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात और आपके बेशुमार सहाबे कराम रदियल्लाहु अन्हुम से जुमे के बाद नमाज जोहर पढ़ना कहीं भी साबित नहीं। हम हैरान है कि नमाज जुमा अदा कर लेने के बाद इख्तियातन जोहर के फ़र्ज पढ़ने वाले और इसका हुक्म देने वाले अल्लाह को क्या जवाब देंगे। माज़अल्लाह, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के बाद जोहर पढ़ना या लोगों को बताना भूल गए थे, जो बाद में आने वाले लोगों ने इजाद करके तकमीले दीन की। एहतियाती जोहर पढ़ने वालों से कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़िए, अल्लाह के नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची ना कीजिए, यानी सूरह हुजरात की इब्तदाई आयात में जो हुक्म है, यही तो है आवाज़ ऊंची करना या आगे बढ़ना, यानी आपके अमल को कम समझना और उससे ज्यादा करने की कोशिश करना। तो क्या पता चला, जोहर पढ़ ली तो पूरी जोहर घर में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी मस्जिद में सिर्फ 2। हम कहते अच्छे इतने इख्तमाम से गए जुम्मा पढ़ने, सिर्फ 2 रकत पढ़ के आ जाएं, घर में तो मैं बड़े इत्तेफाक से 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ती हूँ। तो आप देखिए कि सुन्नत छोटी भी हो थोड़ी भी हो तो उसका ज्यादा है अजर उसे, जो कि इंसान अपनी अक्ल या क्यास या गुमान की बुनियाद पर बड़ी नेकी भी करे। फिर इसके जुमे के दिन एक और चीज़ है, वो क्या, महज जुमे के दिन रोज़ा रखना, यानी जुमे का दिन एक रोज़े का दिन बना लेना ये सोचकर कि ये होली डे है और इस दिन तो इबादत का बहुत अजर है, तो चले जुमा तो मैं पढ़ ही रहा हूँ मैं रोज़ा भी रख लूँ, तो इसके बारे में क्या हुक्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन रोज़ा रखने के लिए और जुमे की शब यानी जुमेरात और जुमे के दरमियानी रात को इबादत के लिए मखसूस करने से मना फरमा दिया। अभी वजह भी देख लेंगे हम इंशाल्लाह। रिवायत है सही मुस्लिम की 1144। ठीक है, तो खाली जुमे के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए और इस रात की इबादत का मखसूस करना भी नहीं है, क्योंकि फिर देखिए इस्लाम में डे सेलिब्रेशंस नहीं है। जो चीज़ जिस दिन के साथ है बस उस पे रहिए, उससे आगे बढ़ना या उसमें कमी करना ये अल्लाह के नबी की बात को ना मानना है। जुमे की अजान कैसे होगी? साहिब बिन यजीद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के ज़माने में जुमे की अजान इस वक्त होती थी जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठता था। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने और लोग ज़्यादा हो गए तो एक मुकाम जिसका नाम था जूरा, जूरा पर एक और अजान दी जाने लगी। इमाम बुखारी फरमाते कि जूरा मदीने के बाजार में एक जगह है। मस्जिद के अंदर इमाम के खुतबे से पहले सिर्फ एक अजान है। आमतौर पर मसाजिद में खुतबे की अजान से पहले दी जाने वाली अजान का सबूत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौर में भी नहीं मिलता, इससे बचना चाहिए। और जुमे के दिन अजान जुमा मिंबर के पास होनी चाहिए। अब ये सारी बातों की थोड़ी सी वजाहत लीजिएगा कि जुमे के दिन अजान यानी अजान उस्मानी का पस मंज़र यह कि अहद नबूवत में मदीना मुनवरा और इसकी आबादी का हजम नस्बता मुख्तसर था, लोगों को आसानी से अजान का इल्म हो जाता था, यानी करीब करीब आवाज़ चली जाती थी। अहद उस्मानी में जब आबादी ज़्यादा हो गई तो तमाम लोग अजान की आवाज़ नहीं सुन पाते थे, नतीजा ये निकला कि कई लोग मस्जिद में बर वक्त पहुँचने से रह जाते थे। इसका इंतजामी हल ये निकाला गया कि पहले मस्जिद से बाहर बाजार के अंदर जूरा के मुकाम पर अजान दी जाती, इससे कुछ ही देर बाद मस्जिद नबवी में दूसरी अजान हो जाती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो का ये इकदाम बिदत नहीं, लेकिन इस पर अमल इन असबाब व हालात के साथ मशरूत होगा जिसकी बिना पर उस्मान रजी अल्लाह अन्हो ने इस अजान की इब्तिदा की थी, और वो लोगों की कसरत और इनके घरों का मस्जिद से दूर होना जिसकी वजह से अजाने मस्जिद की आवाज़ इन तक नहीं पहुंचती थी, तो उन्होंने लोगों के जमा होने की जगह यानी बाजार में इन्हें मुत्तले करने के लिए असल अजान से कुछ देर पहले इसका सिलसिला चलाया। आज के ज़माने में अगर कोई इस पर अमल करना चाहता है तो इन्हीं असबाब व शराइत और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर इस पर अमल करे, जबकि आजकल आम तौर पर मसाजिद में जुमे के दिन پہلی اذان کے نام سے دی جانے والی اذان مذکورہ اسباب اور شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو اذان عثمانی ہے اور نہ اذان محمدی، اس لیے اسے مسنون اذان کہنا مشکل ہے۔ یہ روایت ہے العجوبۃ النافعہ، صفحہ نمبر 9-14۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ایک اذان پہلے دی جاتی تھی دور جا کر تاکہ دور والے سنیں اور ان کو جتنا آنے کا وقت چاہیے وہ وقت لے لیں، ٹھیک ہے؟ شروع میں ایک اذان کافی تھی، اب آپ دیکھیے مسجد میں ہی دو اذانیں دینا یہ کوئی بات نہیں بنتی، نمازی تو پہلے آ چکے، حکم کیا تھا کہ چلو دور والے سن لیں اور اذان کی آواز سن کر آ جائیں گے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی، یہاں الحمدللہ جمعے کا بھی موضوع پورا ہوا، تو جزاکم اللہ خیر، ہمارا وقت پورا ہوا۔ آپ اگلا ٹاپک بہت پیارا ہے، عیدین کی نمازیں، اور آپ ڈیٹیل سے عید کے مسائل پڑھیں گے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگوں کو عید کے مسائل بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے زندگی دی تو کل ہم نماز عید شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔